हरे कृष्णा। शिक्षाष्टक प्रभु ने कई बार मुझे आप सब के बारे में बताया है कि कितना अच्छी तरह से कार्यक्रम चल रहा है, आप कितनी बड़ी मात्रा में इस बुधवार के कार्यक्रम में आ रहे हैं। शायद ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अप्रतिम है कि किसी हफ्ते के दिन में शाम के कार्यक्रम में इतनी संख्या में लोग आते हैं। तो मैं बड़ा भाग्य मानता हूँ कि आपके इस बीच में आज मैं आ पाया हूँ। शिक्षा संघ ने कई बार मुझे बोला था यहाँ पे आने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। मैं आया हूँ कई बार पुणे में, नासिक में, पर बुधवार के कार्यक्रम के लिए नहीं आ पाया था। तो गीता का जिस विस्तृत रूप से शिक्षाष्टकम प्रभु ये गीतामृत कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, वह भी शायद पूरे इस्कॉन में अद्वितीय है। तो मैं आज गीता के अंत पर थोड़ा जोर दूंगा। जैसे आज का विषय था कि अनंत गीता के दो अंत, तो इसमें पहले मैं इसका मतलब क्या है बताऊंगा। अनंत गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता जो है, ये वास्तव में अनेक स्तर पे संवाद है। तो हम उसमें से तीन स्तर पे जो संवाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक स्तर पे जो विख्यात है, प्रपन्न पारियाताय तोत्र वेत्रैक बाणैः, कैसे कृष्ण जो भगवान अर्जुन के, भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बने थे, उन्होंने लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः, तीनों लोगों का कल्याण करने के लिए गीतामृत का ज्ञान दिया। तो सबसे पहले भगवद्गीता जो है ये कृष्ण और अर्जुन के रूप के बीच में एक संवाद है। दूसरा है कि वही गीता धृतराष्ट्र और संजय इनके बीच में संवाद है, और संजय कुछ बोलते हैं, धृतराष्ट्र कुछ पूछते हैं, और इस तरह से वो एक दूसरा संवाद है, और ये दोनों संवाद है इनका अंत है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक से लगभग 73वें श्लोक तक, 63वें श्लोक से 73वें श्लोक तक यह अंतरंग जो अंतर का अंदर का संवाद है कृष्ण और अर्जुन, इस संवाद का अंत बताया गया है। और जो दूसरा संवाद है उसमें कि जो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में है, उसका अंत जो है 18वें अध्याय के 74वें श्लोक से 78वें श्लोक तक बताया गया है। और तीसरा जो संवाद है कि हमारे उपनिषदों में हमारे शरीर को एक रथ से तुलना की गई है, और उस रथ, शरीर रूपी रथ में आत्मा जो है वह जो योद्धा है, जो शस्त्र में बैठा हुआ है, जो प्रवास करने वाला राहुक है वो है, और उसका जो सारथी है वो बुद्धि है उस उपनिषदों की तुलना में। तो जब हम भगवद्गीता का संदेश सुनते हैं तो हम भगवद्गीता के संदेश के अनुसार जब हमारी बुद्धि को नियोजित करते हैं तो हम भगवान को हमारा सारथी बनाते हैं। उस समय भगवद्गीता वो हम में और भगवान में, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो परमात्मा और आत्मा के बीच में संवाद है वह भी भगवद्गीता का संवाद है, और वह जो संवाद है वह अनंत है। वह जीवात्मा जब भी, जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक भगवान का साथ संवाद है, भगवान मार्गदर्शन करते हैं, और उसके बाद भी एक प्रेमपूर्ण संबंध है दोनों में, जिसके कारण वह संवाद चालू रहता है। तो इस तरह से जो अनंत गीता जो है, अगर हम गीता को आत्मा और परमात्मा के बीच में संवाद के रूप में देखते हैं तो वो अनंत है। पर अनंत गीता जब इस भौतिक जगत में एक ऐतिहासिक काल में एक समय पे प्रकट हुई तभी वो 700 श्लोकों में बताई गई थी। तो उस गीता के दो अंत है। तो हम ये दोनों अंतों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसके आधार पर हमारे जीवन में इन गीता के दो अंत का क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी भगवद्गीता यह एक बहुत ही ड्रामेटिक, नाट्यमय स्थली पे बताई गई है, युद्ध के बीच में। अगर आजकल तो हम युद्ध के बारे में कुछ मूवीज में देखते होंगे, अखबारों में सुनते होंगे, पर अगर आपको हमको समझना है कि कितना वो आश्चर्यजनक माहौल है वो। मान लीजिए अभी T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, उसके पहले वर्ल्ड कप हुआ था, तो मान लीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल है और वर्ल्ड कप के फाइनल भी चालू हो गया है, सारे प्रेक्षक आ गए हैं, टॉस हो गया है, सारे फील्डर्स सेट हो गए हैं, बॉलर बॉलिंग करने आने वाला है, और तभी जो बैट्समैन बैटिंग करना है वह रुक जाता है और जो नॉन स्ट्राइकर वाले को उसको बुलाता है वहां पे वो लंबा बातचीत करने लगते अगर तभी सब रुक जाते हैं तो बोले अरे जल्दी खत्म करो हमने मैच खेलना है। पर उस समय जब ही पूरा विश्व अभी विश्व का वर्ल्ड कप का फाइनल है उस समय अगर कोई अगर आपको पता है कि दोनों बैट्समैन जो है ये वास्तव में अच्छे स्पोर्ट्समैन है, ये कोई दूसरों को परेशान करने के लिए है, कभी कभी क्या होता है एक बैट्समैन अगर फॉर्म में नहीं होगा तो फिर वो अपने वो सारा पेस को स्लो कर देता है ताकि क्या हो वो जब तब इतना कुछ इवेंट्स ने इतने कुछ प्रसंग ना हो तब तक उसका फॉर्म आ जाएगा वापस। पर ऐसा कोई अनस्पोर्ट्समैनली बिहेवियर नहीं है। अगर हम जान अगर कोई जानता है कि ये दोनों बैट्समैन जो है ये जिम्मेदार बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन है, तो अगर वो ऐसे समय पे कुछ बात कर रहे हैं तो जरूर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगा, इसीलिए वो सारे मैच को रुका रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से कृष्ण और अर्जुन सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापने अच्युत, जब भगवान को अर्जुन कहते हैं कि आप दोनों सेनाओं के बीच में आप मुझे लेके आओ, तो वास्तव में इंग्लिश में बोलते हैं नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मतलब अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है तो भारत की सेना इस जगह पे है, पाकिस्तान की सेना इस जगह पे है, तो उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति होगा तो वास्तव में इधर का भी नहीं है उधर का भी नहीं है। तो भगवद गीता दिखाती है कि कैसे अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के बीच में आता है, यद्यपि वो एक सेना के प्रधान योद्धा है पर वो दोनों सेनाओं के बीच में आ गए हैं, और उन दोनों सेनाओं के बीच में जब आ जाते हैं तो वो क्या है नो मैंस लैंड में है, वो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। पर भगवद गीता दर्शाती है कैसे नो मैंस लैंड बिकम्स गॉड्स लैंड, कि जहां पे वो इस पक्ष में भी नहीं है उस पक्ष में भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जब आ गए हो तब क्या होता है वहां पे भगवान अपना परम ज्ञान देते हैं और वही जो भूमि है वो सनातन काल के लिए एक पावन भूमि बन जाती है जो अभी कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर नाम से जानी जाती है, ज्योतिषार, ज्योतिषर जिसे कहते हैं, ज्योतिषार वास्तव में उसका संस्कृत में अर्थ है, ज्योतिषार मतलब सारी ज्योति, सारी जो रोशनी देने वाली ज्योति है उसका सार। हमें जो अभी ट्यूबलाइट है या आसमान में सूरज है उससे जो ज्योति मिलती है उससे हमको महत्वपूर्ण योगदान होता है, हमें रास्ता दिखता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, पर उससे महत्वपूर्ण ज्योति है जो हमारे अंदर ज्योति होती है, कि हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, अलग अलग प्रकार की कामनाएं हैं, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, पर कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है यह सब समझने के लिए भगवद गीता हमें अंतरंग ज्योति प्रदान करती है, और उस ज्योति से ज्ञान दीपे न भास्वतः, हमारा अंतकरण जो है पूरी तरह से एक दीप ज्ञान के दीप से उज्ज्वलित हो जाता है, और जब इतना हम अंदर से उज्ज्वलित हो जाते हैं उतना हमारा बाहर से भी जो मार्ग है वो स्पष्ट हो जाता है। तो यह भगवद गीता की जो पार्श्वभूमि है, और ऐसे पार्श्वभूमि में अर्जुन और कृष्ण संवाद होता है, और वास्तव में एक और आश्चर्यजनक बात है कि शायद अगर दो क्रिकेट के बैट्समैन हैं और वो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के चैंपियन मैच के कुछ समय पहले बातचीत कर रहे हैं तो साधारणतः हम कल्पना करेंगे विचार करेंगे कि शायद ये बॉलर ऐसा बॉलिंग करेगा तो उसका कैसे हम प्रतिकार करेंगे, हम क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, किस तरह से हम युक्ति बनाएंगे, तो तभी हम सोचेंगे साधारणतः ये बैटिंग कैसे करने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैसे ही अगर कृष्ण और अर्जुन युद्ध के पहले बात कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि शायद ये युद्ध की नीति के बारे में बात करेंगे, अरे ये ऐसे भीष्म ऐसे आक्रमण करेगा तो हम ऐसा प्रतिकार करेंगे, द्रोण ऐसे आक्रमण करेगा तो हम ऐसा प्रतिकार करेंगे। पर अगर आप पूरी भगवद गीता देखते हैं उसमें युद्ध नीति के बारे में एक भी श्लोक नहीं है, युद्ध के बारे में जो रेफरेंस है युद्ध उल्लेख है वह भी बहुत कम है। ऐसा कारण यह है कि भगवद गीता एक रणभूमि से चालू होती है और रणभूमि में अंत होती है, पर भगवद गीता का संदेश जो है रणभूमि से बहुत ऊपर उठ जाता है। कृष्णा बाय हिज प्रेजेंस एंड हिज प्रेजेंटेशन टेक्स Arjuna to lofty heights of knowledge that have rarely been scaled before or after. इसके पहले या उसके बाद में विश्व के इतिहास में जो ऊंचे ऊंचे स्थान तक ज्ञान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो अर्जुन को उठा के ले आते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो विश्व के इतिहास में उसके अधिक तुलनाएं नहीं है। तो इस तरह से भगवान संदेह देते हैं, वह युद्ध से उसे कोई संबंध नहीं है डायरेक्टली, उसका जो कुरुक्षेत्र के युद्ध से नहीं है, उसका संदेह, उसका जो मर्म है, उसका जो सार है, वह हरेक आत्मा की जो अंतरंग पुकार होती है। द भगवद गीता डेमॉन्स्ट्रेट्स द ट्रांसफॉर्मेशनल पावर ऑफ लव, जो प्रेम के परिवर्तन करने की शक्ति है वह भगवद गीता दर्शाती है। जो कौन सा अभी युद्ध में कौन से प्रेम की बात आती है, वहां पे भगवान बताते हैं कि जो आत्मा और भगवान इन दोनों में जो प्रेम का संबंध है वह शाश्वत संबंध है, और उस संबंध के आधार पर यदि व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह जो कार्य है वह बाहर रूप से एक ही समान लगता होगा पर अंतरंग रूप से पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई जगह पे एक ऐसी जगह पे जहां पे कोई सा कोई पाठशाला नहीं है, वहां पे अभी एक पाठशाला बन रही है और वहां पे कई लोग हैं जो पाठशाला बनाने में मजदूर है, वो पाठशाला बनाने में वहां पे कार्य कर रहे हैं। तो एक आदमी जाके पूछते आप क्या कर रहे हो, दिखता नहीं है मैं ये सारे ईंटें उठा के लेके जा रहा हूँ। दूसरे आदमी को पूछते तुम क्या कर रहे हो, बोल रहे मैं मेरी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। तीसरे आदमी को पूछते आप क्या कर रहे हो, बोलते मैं यहाँ पे एक पाठशाला बनाने में मदद कर रहा हूँ जहाँ पे सैकड़ों हजारों विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करेंगे। कार्य वही है तीनों का, पर तीनों की दृष्टि अलग है। तो उसी तरह से जो भगवद्गीता में युद्ध होता है, भगवान क्या करते हैं अर्जुन की दृष्टि बदल देते हैं। और भगवद्गीता में अलग अलग प्रकार के विषयों पर चर्चा की गई है, और ये सारे विषय है उनका सार अगर हमें देखना है तो दो है कि साध्य क्या है, साधन क्या है। साध्य मतलब अगर अभी मैं अभी आज सुबह अभी बॉम्बे से आया आज दोपहर को, तो जब मैं बॉम्बे से निकला तो मुझे कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए, साध्य क्या है, और फिर वहाँ से जाना है तो कैसे जाना है, गाड़ी से जाना है, बस से जाना है, कार से जाना है, प्लेन से जाना है, तो साधन क्या है। तो हमारा जीवन भी एक प्रवास के समान है, और इस प्रवास में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे जाना है, मेरा साधन क्या है, मेरा साध्य क्या है। तो भगवद्गीता में सार में ये बताया गया है कि अलग अलग साध्य है, अलग अलग साधन है, पर उसमें से सर्वोच्च साध्य क्या है और उसमें से सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है, इसके बारे में अर्जुन को विश्लेषण करके एक उसका सिद्धांत बताया गया है। तो भगवान ये सारा विश्लेषण करके सिद्धांत बता देते हैं, और फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में वे बोलते हैं कि विमृश्य तद अशेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। वो कहते हैं इति गुह्यतम, बड़ा गुह्य ज्ञान मैंने बताया है आपको, और अभी इस पर आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए और आप फैसला कीजिए क्या करना है। यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप कार्य कीजिए। अभी वास्तव में यहाँ पे हम देखते हैं कि यद्यपि कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण अर्जुन के बुद्धि का और अर्जुन के स्वेच्छा का आदर करते हैं कि तुम फैसला करो तुम्हें क्या करना है और तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये प्रधान आचार्य है जिन्होंने हमारे संप्रदाय में जिन्होंने भगवद्गीता को बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, वो बोलते हैं इस समय अभी जब इस तरह से भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम विचार करो तुम फैसला करो, तो अर्जुन सोच में डूब जाते हैं कि कृष्ण ने भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में ये कहा है, पांचवें अध्याय में वो कहा है, सातवें अध्याय में वो कहा है, ग्यारहवें अध्याय में वो कहा है, अठारहवें अध्याय में ये कहा है, अभी इतनी सारी चीज़ें बताई है उसमें से क्या करना है। और जब इस तरह से विचार में डूब जाते हैं, जितना वो विचार में डूबते हैं अर्जुन उतने भगवान की अनुकंपा जो है वो और बह के बाहर आती है। और भगवान बता, भगवान का भाव होता है कि अर्जुन तुम्हें इतना चिंतन करने की जरूरत नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं तुम्हें क्या करना है। तो फिर वे 64वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परम वचः इष्टोऽस्मि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो वे कहते हैं सर्वगुह्यतम भूय, सारा जो ज्ञान है उसमें से सबसे गुह्य जो ज्ञान है मैं बता रहा हूँ भूय, इसके पहले नहीं बताया मैंने पर वापस बता रहा हूँ मैं, सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परम वचः। ये परम वचः सबसे महत्वपूर्ण वचन है मेरे। कभी अगर आप कोई परीक्षा होगी विद्यार्थी योगी, उसके पहले अगर टीचर बोलते हैं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे विद्यार्थी नोट कर लेंगे हाँ ये एग्जाम में आने वाला है। तो वैसे भगवान दो बार बताते सर्वगुह्यतम, सबसे गुह्य है ये, सबसे महत्वपूर्ण है परम वचः। और उस वजह बता रहे इष्टोऽस्मि मे दृढमिति, इष्ट तुम मुझे बहुत इष्ट हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, कितने प्रिय हो दृढमिति। भगवान कहते हैं कि यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि भगवान का भाव है कि भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें दृढ़ता से याद करने वाला हूं। सो कृष्णा इज डिटरमिंड टू लव अस, भगवान बड़े दृढ़ संकल्प से हमें प्रेम करते हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम वी आर डिटरमिंड टू फॉरगेट हिम, कि हम हमारे दृढ़ता से भगवान को भूल के भगवान के लिए अलग अलग पर्याय ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो आधुनिक संस्कृति है मतलब क्या है, पहले 10 साल पहले 15 साल पहले टीवी होता था तो बड़ी बात होती थी, बाद में टीवी पे एक चैनल, 5 चैनल, 10 चैनल, अभी कभी कभी टीवी पे 100, 150, 500 चैनल होते हैं। ये 500 चैनल हो या 5000 चैनल हो, कोई भी चैनल सुख की ओर ले जाने वाला है। कुछ थोड़ा थोड़ा आनंद, थोड़ा थोड़ा कुछ क्षणिक उत्तेजन मिल सकता है हमारे इंद्रियों के लिए, मन के लिए, बट द ओनली चैनल टू हैप्पीनेस इज भक्ति फॉर कृष्णा। भगवान कृष्ण के प्रति हम भक्ति रखें तो उसी से हमें शाश्वत आनंद मिलने वाला है। यहाँ भगवान बता रहे हैं इष्टोऽस्मि दृढमिति, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए ततो वक्ष्यामि ते हितम्, इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान बता रहा हूँ, ततो वक्ष्यामि ते हितम्, तुम्हारे हित के लिए मैं ज्ञान बता रहा हूँ। फिर ये ज्ञान क्या है वो अगले श्लोक में बताते हैं, 65वें श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। तो भगवान बताते हैं कि आप मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, माम नमस्कुरु। और वास्तव में ये चार चीजें हैं, बिल्कुल वैसे ही चार चीजें भगवान ने इसके पहले 9वें अध्याय में बताई है, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताई है। और उस श्लोक में और इस श्लोक में जो फर्क है, पहले दो पंक्तियां बिल्कुल समान है, दूसरी दो पंक्तियां है उसमें फर्क है, और ये फर्क से भगवान का जो भाव है उसका फर्क समझ में आता है। पहले जो 34वें श्लोक में बताया गया है 9वें अध्याय के, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मानाम मत्परायणः, कहते माम ए वैश्यसि, आप जरूर मेरे पास आओगे इस युक्त वैवम, इस तरह से अगर आप भक्ति करोगे तो, आत्मानाम मत्परायणः, अगर आपके आत्मा मुझ में परायण कर दोगे तो जरूर आप मेरी प्राप्ति कर लोगे। तो वहां पे भगवान बता रहे हैं कि हमें उनकी प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना है, अगर आप ये करोगे तो जरूर आप मुझे प्राप्त करोगे। पर यहां पे भगवान का जोर क्या है कि आपको क्या करना है, जोर नहीं है, मैं क्या करने वाला हूं ये भगवान बता रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते, मैं सत्य बोल रहा हूं आप जरूर आओगे मेरे पास, मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे, प्रतिजाने मैं घोषणा कर रहा हूं प्रियोऽसि मे, आप मेरे बहुत प्रिय हो। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मनी मन ये कृष्ण रंजीव जी संवाद करते हैं, हे कृष्णा आप तो बहुत घोषणा करते हो पर आप कभी कभी अपने वादाओं को पूरा नहीं करते, आप गोपियों को बोले कि आप जरूर वापस आ जाओगे पर आप वापस नहीं आए, आपने बहुत से वादा किए
तो भगवान बोलते हैं प्रतिजाने, वैसे वैसे ये वादा नहीं कर रहा, मैं घोषणा कर रहा हूँ प्रियो उसी में, आप बहुत प्रिय हो मेरे। प्राचार्यगण बताते हैं कि भगवान वास्तव में गोपियों से पुनर्मिलन करने के लिए वापस वृंदावन भी पहुंच जाते हैं, पद्म पुराण विष्णु पुराण में इसका वर्णन है। पर भगवान बोलते मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आप ये करो, मैं सत्य बता रहा हूँ कि आप मुझे मुझे प्राप्ति कर लोगे। तो इसके बाद में इस तरह से घोषणा, तो अभी फिर भी अर्जुन को सर थोड़ा विचार आता है कि शास्त्रों में इतने सारे मार्ग बताए गए, कभी कर्म मार्ग बताया है, कभी ज्ञान मार्ग बताया है, कभी तप, कभी संन्यास बताया है, कभी गृहस्थ आश्रम बताया है, ये बताया है, वो बताया, इतने सारे मार्ग हैं, अभी मैं कैसे ये फैसला करूँ, कैसे ये हौसला रखूँ कि यही एक मार्ग है। तो फिर उस तभी ये भगवद्गीता का चरम श्लोक आता है, जो रामानुजाचार्य प्रमुख आचार्य है वे बताते हैं कि ये जो श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, वे कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं कि जो भी अलग अलग धर्म है उन सबका परित्याग कर दो और क्या करो, केवल मेरी भक्ति करो, मां एकम शरणम व्रज। तो ये कर लोगे आप, तो बोले अरे ये धर्म त्याग कर देगा, वो धर्म त्याग कर कैसे चलेगा, बोलते कि नहीं अगर वो धर्म त्याग करने में कोई पाप भी लग गया, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम चिंता मत करो। तो आचार्य ने बताते हैं कि यह श्लोक जो है इसकी तुलना होती है 7वें अध्याय में एक श्लोक आता है 28वां श्लोक, वहां पे भगवान बताते हैं किस तरह से आपको सारे पापों से मुक्त होना है, फिर आप मेरी भक्ति कर पाओगे। ये शाम त्वंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़कृतः। तो सारे पापों से मुक्त हो जाओ, आप पुण्य करो और ऐसे करोगे उसके बाद में आप दृढ़ता से मेरी भक्ति कर पाओगे। पर यहाँ पे भगवान बता रहे, तो वहां पे पहले बता रहे पहले पापों से मुक्त हो जाओ फिर भक्ति करो दृढ़ता से, यहाँ पे भगवान बता रहे तो अभी भक्ति करो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पे क्या है, भगवान का जो भाव है वह भगवान का स्नेह है, जैसे चक्रवर्ती बात बता रहे कि भगवान का अनुकंपा जो है उनके हृदय से पूरी बह रही है और उनके वचनों से सारे विश्व को उनके कृपा से आप्लवित कर रही है। यहाँ पे आचार्य उदाहरण देते हैं कि कैसे कोई छोटा बालक होता है, जो छोटा बालक बढ़ रहा होता है तो उसको कैसे कभी कभी वो अपने वस्त्रों को गंदा कर देता है, तभी माता बोलती है कि आपको अगर शौच कार्य करना है तो आपको वहां पे जाके करना चाहिए, ऐसे अपने वस्त्रों को गंदा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो अगर वो वस्त्र गंदा करता है तो माँ बोलती है कि अभी तुम वापस ऐसे कभी करोगे तो मैं तुम्हें पास में ही नहीं लूंगी, पहले तुम साफ करो अपने आप को। तब छोटा बालक है, मैं कैसे साफ करूं, ओ बिल्कुल असह्य भाव से अपनी माँ को आया था, माँ बोलती तुम आओ मैं तुम्हें साफ कर देता। तो उसी तरह से भगवान पहले बोलते तुम साफ हो जाओ फिर मेरे पास आ जाओ, तो अंतगत पाप सारे पाप बंद करो फिर मेरे पास आ जाओ। पर अगर भगवान बोलते मैं असहाय हूं मैं कैसे पापों से, तुम आ जाओ मेरे पास मैं तुम्हें साफ कर दूंगा।
अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा
शुचः। तो मैं तुम्हें साफ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर, तुम कस मेरे पास आ जाओ। और अभी जब ये बता देते हैं तो यहाँ पे वास्तव में भगवद्गीता खत्म हो गई है। इसके बाद में जो श्लोक है उनको फलश्रुति कहते हैं। फलश्रुति मतलब कि ये श्रवण करने का, ये कथन करने का, स्मरण करने का क्या फायदा है ये बता रहे हैं। तो वो बताने के पहले ये भगवद्गीता किसको बतानी चाहिए किसको नहीं बतानी चाहिए इसके बारे में भगवान चुनौती देते हैं। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम च माम यो अभ्यसूयति। तो 67 श्लोक में बताते हैं वो कि जो तपस्या नहीं करते हैं, जो सेवा नहीं रखते हैं, जिनमें भक्ति नहीं है, जो ईर्ष्यालु है, ऐसे लोगों को ये ज्ञान मत दो। तो भी हम बोले कि सारे दुनिया के लोग तो ऐसे ही हैं फिर ये ज्ञान दे किसको। तो वास्तव में कैसे है ये, ऐसे नहीं कि भगवान ये ज्ञान देना नहीं चाहते हैं, पर भगवान का भाव क्या है कि मान लीजिए अगर कोई बहुत ही रईस पिता है और उनकी जो बहुत सी संपत्ति है, ये वास्तव में जो संपत्ति है वो अपने अपने संतानों के लिए ही है, पर अगर वो सोचते हैं कि मेरे जो संतान है वो अभी जिम्मेदार नहीं है, अगर उनको पैसा दे देंगे तो फिर वो सारे अय्याशी में पैसा गंवा देंगे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए अगर उनके पास अपने ही अंदर के कुछ कमरे में, कुछ लॉकर में कोई बहुत ही मूल्यवान रत्न है, तो उनके बारे में बताएगा ही नहीं वो कभी कि इतने रत्न है मेरे पास। पर अगर शायद उनमें से एक पुत्र है, वो बड़ा ही जिम्मेदारी से कार्य करता है और अपने पिता का विश्वास बहुत ही प्राप्त कर लेता है, तो एक दिन बड़े स्नेह के भाव में आके वो पिता अपने अंदर की तिजोरी में लेके जाते हैं और पुत्र को दिखाते हैं, ये देखो ये मेरे पास ये सारे जेवर ये सारे रत्न है मेरे पास। और फिर वो जब इस तरह से भाव में बोल के बोलते हैं कि सब रत्न है मेरे पास, उसके बाद में वो क्या बोलेंगे, अपने भाई बहनों को ये बताओ मत, क्यों ऐसे नहीं कि उसे छुपा के रखना है, पर अभी तक उतनी जिम्मेदारी उनको प्राप्त नहीं हुई है कि वो जब जिम्मेदार हो जाएगा तो सारे जो रत्न वगैरह है पिता अपने संतानों के लिए प्राप्त किया है, पर उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि ये इन सब लोगों को आप बताओ मत ज्ञान, उसको क्या है, इट इज नॉट फॉर डिप्राइवेशन, इट इज फॉर एलिवेशन। ऐसे नहीं कि हम वो उनसे वांछित रखना चाहते हो ज्ञान से, पर वास्तव में वो हमको आध्यात्मिक दृष्टि से वो हम वृद्धि हो, हम बढ़े, वो उस प्रेरणा के बता रहा है कि ये जो गुह्य ज्ञान है सबको देना नहीं चाहिए। तो सबको भगवान सबको देना ही चाहते हैं, पर वो लोगों को विकसित होना चाहिए वो प्रेरणा के लिए। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि जो जिनको ज्ञान देते हैं वो क्या है, वो दो श्लोकों में बताते हैं, पहले सत्तर श्लोकों में बताते हैं कि ये ज्ञान जो प्रचार करेंगे, यदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव इष्यते संशयः, बताते हैं कि ये जिस ज्ञान है बड़ा गुह्य ज्ञान है, इसका कोई प्रचार करेगा तो उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी, पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी और अवश्य वो मेरे पास आ जाएगा। अभी जो पराभक्ति है यही शब्द है, यदम परमं मद्भक्तेषु अभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा, पराभक्ति मतलब शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो है भगवान ने इसके पहले ही 13 श्लोक पहले 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है, 54वें श्लोक में वास्तव में 13 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मेरी पराभक्ति जो है वो किसको प्राप्त होती है, जो बहुत दीर्घ काल तक तपस्या करता है, सारे सुख भौतिक सुख को त्याग देता है, फिर ब्राह्मण के स्तर पे आता है, फिर शुद्ध होके उसके बाद में जब वो मुक्ति के पराकाष्ठा पे, मुक्ति की चरम सीमा पे पहुंचता है, तब उसको पराभक्ति प्राप्त होती है। पर भगवान बोलते हैं कि जो ये ज्ञान का प्रचार करेगा उनको ये पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। और उतना ही नहीं, अगले श्लोक बता दे जे तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतम भवितानच मे तस्मान अन्य प्रियतरो भुवि। तो 69वें श्लोक बताते हैं कि ये व्यक्ति जो मेरे ज्ञान का प्रचार करेगा वो मुझे इतना प्रिय है, उससे अधिक और प्रिय कोई नहीं होगा। ये सारे विश्वभर में ये भगवद्गीता का संदेश, और खास करके भगवद्गीता में भगवत प्रेम का संदेश जो है उसका प्रचार श्री प्रभुपाद जी ने किया है सारे विश्वभर में अप्रतिम दर्जे में, तो वे भगवान को परम प्रिय है। तो अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर आप प्रचार करोगे तो आप बहुत प्रिय हो जाओगे मुझे, आपको सारे जीवन की सर्वोच्च जो आशीर्वाद है प्राप्त हो जाएंगे। पर अगर कोई बोलेगा बाप रे प्रचार करना तो बड़ा मुश्किल है, मैं प्रचार नहीं कर सकता, तो भगवान बोलते ठीक है प्रचार मत कर सकते हैं तो आप कम से कम अध्ययन करो। अधिष्यते च यमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्याम इति मे मतिः। बताते हैं कि अगर आप इसको प्रचार नहीं कर सकते, कम कम से आप बैठ को आप पढ़ाई करो। और वो कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई करोगे, अध्ययन करोगे इस ज्ञान का, तो क्या हो रहा है, ये अध्ययन जो है ये वास्तव में इसके द्वारा आपकी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हो। साधारणतः हम पूजा सोचते हैं कुछ दिया लेके, अगरबत्ती लेके, फूल लेके पूजा करते हैं, और वो महत्वपूर्ण पद्धति विधि से पूजा है, विग्रहों की पूजा करते हैं। पर उसके साथ साथ यहाँ पे भगवान बताते हैं कि पूजा यह हम किस तरह से हमारी बुद्धि को एक दिया के रूप में इस्तेमाल करके जब हम भगवद्गीता का अध्ययन करते हैं, वह कोई सिर्फ ज्ञान का कार्य नहीं है, वह भी भक्ति पर पूजा हो सकती है जब हम बुद्धि से भगवान के संदेश का अध्ययन करते हैं। और फिर अगले श्लोक में बताते हैं, अगर कोई बोले बाप रे ये भगवीता का अध्ययन करना भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो भगवान बोलते ठीक है आप अध्ययन नहीं करते, कम से कम श्रवण करो आप, दूसरा कोई पढ़ाएगा आप सिर्फ जाके श्रवण करो आप। और वो कहते हैं अनुश्रुण्यादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। बोलते हैं कि जो अगर इस तरह से सुनता है अनुश्रुण्या ध्यान पूर्वक सुनता है तो वह भी उच्च लोगों की प्राप्ति हो जाता है। आचार्य गण बताते हैं यहाँ पे कि उच्च लोग मतलब स्वर्गलोक नहीं है, स्वर्गलोक से परे जो ध्रुव लोक है जहाँ पे भगवान के परम शुद्ध भक्त ध्रुव रहते हैं, मतलब वो वैकुंठ के समान ही है, वहाँ से प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, भगवान अपनी कृपा और बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक कुएं में गिर गया है तो बाहर से कोई एक रस्सी फेंकता है, बोलते अभी तुम ये रस्सी पकड़ो मैं तुम्हें बाहर खींच लेता हूँ, तो वो पहला स्तर है। भगवान बोलते हैं आप प्रचार करो, आप मैं आप मुझे भक्ति मई प्रणाम करता हूँ मैं वही से समझेगा। तो अगर बोलता है बाप रे रस्सी को पकड़ के रखूंगा मेरे हाथ को बहुत दर्द होगा, तो बोलते ठीक है वो रस्सी को लेते हैं और रस्सी क्या करते हैं रस्सी में किसी गांठ ला देते हैं, ठीक है तुमने अपने जैसे कमर में रस्सी को बांध लो यहाँ पे मैं तुमको पूरा खींचता हूँ, तुमको पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। वो क्या है दूसरा स्तर है, तुम बचा नहीं कर सकते तुम कम से कम अध्ययन करो। पर कोई बोलता है बाबा मेरे कमर को रस्सी बांध लूंगा तो उससे मेरे कमर को बड़ा दर्द होगा ना, तो ये भी नहीं कर सकता मैं, तो ठीक है वो क्या करते हैं ऊपर से वो रस्सी एक बकेट को बांध देते हैं बड़ी बकेट को, अरे बकेट नहीं तुम सिर्फ इसमें बैठ जाओ मैं तुमको खींच लेता हूँ। तो तीसरा स्तर क्या है, तुम सिर्फ श्रवण करो मैं तुमका उदाहरण कर लूंगा। तो इस तरह से भगवान जो अपनी कृपा है जो फलश्रुति है उसकी जो पहुंच है उसको अपनी कृपा के कारण और बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। और फिर इसके बाद में ये 71वां श्लोक हो गया, फिर 72वें श्लोक में भगवान बोलते हैं हे अर्जुन कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोह प्रणश्यस्ते धनंजय। वे कहते हैं अर्जुन क्या तुमने ध्यान पूर्वक सुना ये कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ, तुमने अच्छे से सुना है त्वयि एकाग्रेण चेतसा, एकाग्रेण एकाग्रता ये दो अर्थ है इसके, एक है पूरा ध्यान पूर्वक होकर सुनना एकाग्रत होकर, मतलब इधर उधर से उधर जो जाती चीजों को ध्यान नहीं देना पर उसी चीज तो ध्यान पूर्वक सुना है क्या। पर एकाग्रता दूसरा एक और अर्थ है कि जो पातंजलि का योग सूत्र है उसमें मन के अलग अलग स्तर बताए गए हैं, उसमें जो मन का सर्वोच्च स्तर जो है मन की चेतना का उसको निरोध बताया गया, उसके नीचे एक स्तर जो है वह एकाग्रत है। तो मतलब एकाग्र स्तर पर कोई आ गया है उसका मतलब है कि वो जल्दी ही अभी इसके बाद में समाधि के स्तर पर चले जाएगा। तो भगवद्गीता का संदेश अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हम सब समाधि के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन क्या आपने ध्यान पूर्वक सुना है ये, तो एकाग्रेण चेतसा, तो अगर आपने ध्यान पूर्वक सुना है तो क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए अगर किसी ने कोई सवाल पूछा है प्रवचन में और फिर किसी ने जवाब दिया, तो अगर जवाब ध्यान पूर्वक सुना है तो फिर जो जो सवाल था उस सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो शंका है निकल जाएगी। तो भगवान उसी से पूछ रहे हैं कि आपने ध्यान पूर्वक सुना है कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोह प्रणश्यस्ते धनंजय। हे अर्जुन क्या तुम्हारा अज्ञान और अज्ञान के कारण जो मोह आया है क्या उसका नाश हो गया है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि भगवान बड़े चिंतित है, वह पूछ रहे हैं अर्जुन को हे अर्जुन क्या आप समझ पाए इस संदेश को, और वह ऐसे नहीं है कि कोई शिक्षक होता है जो शिक्षण देता है केवल अपनी तनख्वाह प्राप्त करने के लिए, और कई बार ऐसे शिक्षक होते हैं कि वो कुछ पढ़ाते हैं और इस तरह से पढ़ाते हैं कि लोगों को समझ भी नहीं आता है, सवाल भी नहीं आता है, सवाल पूछते तो बोलते मेरे प्राइवेट ट्यूशन में आ जाओ वहां पे समझाऊंगा। तो क्या है उनके लिए कई बार पढ़ाना होता है इट्स सिंपली अ प्रोफेशन, वो केवल एक तनख्वाह प्राप्त करने के लिए कार्य है। पर भगवान इस तरह से नहीं है, भगवान वास्तविक चित्त क्या आपको समझ में आया है? तो आचार्य बताते हैं कि भगवान का भाव यहाँ पे है अर्जुन, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो कौन सा भाव समझ में नहीं आया बताओ तुम्हें, मैं तुम्हें पुनः समझाऊंगा, और अगर तुम्हें भगवद्गीता पूरी समझ में नहीं आई है मैं पूरी भगवद्गीता भी दोहराने के तैयार हूँ, और तुम बताओ क्या तुम्हें समझ में आया है नहीं। और फिर यहाँ पे भगवान के वचन अंत होते हैं 72वें श्लोक में, और फिर 73वें श्लोक में क्या होता है, अर्जुन वाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। बताते हैं चार श्लोकों में चार अलग अलग पॉइंट, चार पंक्तियों में चार अलग अलग पॉइंट है। पहले पॉइंट में क्या है, नष्टो मोह, अर्जुन ने मान पूछा था क्या आपका मोह चला गया है, प्रश्नस्ते धनंजय कहा नष्टो मोह। और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज स्मृति लब्धा, तो ऐसे जो आध्यात्मिक ज्ञान है इट इज नॉट द डिस्कवरी ऑफ द न्यू, इट इज द रीडिस्कवरी ऑफ द इटर्नल। कि जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऐसे नहीं है कि जो नई चीज मुझे कुछ पता नहीं थी वो मुझे जानकारी प्राप्त करनी है, हाँ वैसे भी हमको बहुत सी जानकारी मिल सकती है, पर आध्यात्मिक ज्ञान का सार, आध्यात्मिक ज्ञान का सार क्या है कि जो शाश्वत है उसको हम पुनः जागृत करना। तो ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे कभी हिडन ट्रेजर, कोई खजाना कहीं छुपाया हुआ है उसकी खोज में जा रहा है, तो खजाना मैंने कभी देखा नहीं है तो वहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाऊँगा यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे खनना है फिर मुझे खजाना प्राप्त होना। तो आध्यात्मिक ज्ञान उस प्रकार का नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति वो कैसे है कि मान लीजिए अगर हम बचपन में कोई एक जगह पे गए थे, यहाँ पे हम बचपन में खेल कूद करते थे, जैसे हमारे रिश्तेदार का घर था, और 20 30 40 साल के बाद जब आप वहाँ पे जाते हैं, अरे हाँ ये कुआ हमें देखा हुआ लगता है यहाँ पे, अरे ये नदी हम यहाँ पे खेला करता था, और वहाँ पे जब जाते हैं वहाँ पे शायद हमारे कोई बड़े प्रिय मित्र थे जो 30 40 साल में मिले नहीं, जब वहाँ पे देखते हैं तो वो अरे वो हमको याद करते हैं, फिर हमको भी याद आते हैं, और तभी क्या है स्मृति लब्धा, हमारी स्मृति पुनः जागृत हो जाती है। तो वैसे ही जब हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या है, भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है पर हमें विस्मृति हो गई है, तो भगवत गीता के संदेश से क्या होता है, स्मृति लब्धा, हमारी स्मृति पुनः जागृत हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत् प्रसादान मया अच्युत, हे अच्युत हे कृष्ण तुम्हारी कृपा से ये हुआ है। तो पहले पंक्ति में क्या फल हुआ बता रहे हो, दूसरी पंक्ति में फल कैसे प्राप्त हुआ है, तत् प्रसादान मया अच्युत। तो अभी ये अच्युत शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले भगवद गीता में अर्जुन जब कृष्ण को संबोधित करते हैं तभी भी ये शब्द अच्युत पूछा है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके जाओ। यहाँ पे बता रहे हैं कि आपकी कृपा से हे अच्युत मेरा भी मोह चला गया है। अच्युत अच्युत मतलब जो भगवान कभी चूकते नहीं हैं, जो हमेशा जो हमारे संरक्षण करने का, हमारा संवर्धन करने का, हमारे उद्धारण करने का जो वादा है उसमें हमेशा वो सक्षम रहते हैं। स्थितोस्मि गत संदेह, स्थितोस्मि अभी मैं अच्छी तरह से स्थित हो गया हूँ, गत संदेह सारे संशय चला गए, तो मतलब अर्जुन की योद्धा है और अभी रणभूमि पे युद्ध करने के लिए आ गए हैं, तो जो उनकी स्थिति है उस स्थिति में उच्चतम से वो स्थित हो गए हैं। पर यहाँ पे जब भगवद गीता की शुरुआत में अर्जुन रुक जाते हैं तभी वो कहते हैं गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं उच्चैति गोविंद। पर यहाँ पे जब अर्जुन गीता का विराम होता है तब वो नहीं बोलते मैं युद्ध करूंगा, वो क्या बोल रहे हैं, करिष्ये वचनं तव, मतलब अर्जुन के लिए अभी जब भगवद गीता का ज्ञान समझ गए हैं तो वो क्या कार्य कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, किसके लिए कार्य कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन एक योद्धा है इसलिए युद्ध करेंगे, पर उनको युद्ध का महत्व नहीं है, वो क्या है, भगवान आपकी इच्छा है इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूँ मैं। तो अर्जुन यह देख रहे हैं कि मैं योद्धा हूँ इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ इसीलिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, और उनकी सेवा मैं जिस पद्धति से चाहिए वो कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं युद्ध करके सेवा कर रहा हूँ। तो भगवद्गीता जो अंत जो है वो क्या है कि कैसे हम हमारी हम भगवान की शरण जाते हैं, करिष्ये वचनं तव। जो बाइबल है उसमें अंत में उसका जो अंत आता है गॉस्पेल्स का, वहां पे जीसस बताते हैं कि ओ फादर लेट thy विल बी डन नॉट माइन, कि हे प्रभु जो आपकी इच्छा है वो हो मेरी इच्छा नहीं। और यह शरणागति की बहुत उच्च स्तर बताया गया है, और सत्य में है ये कि कई बार हम चाहते हैं ऐसा हो वैसा हो वैसा हो, और जब नहीं हो रहा होता है वो तभी हम बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं। पर तभी अगर हम शरणागत हो भगवान जो आपकी इच्छा है वो हमें दो, लेट thy विल बी डन, ये ऊंचा स्तर का शरणागति है। पर यहाँ पे जो अर्जुन बता रहे हैं क्या है, इट इज नॉट जस्ट लेट thy विल बी डन, अर्जुन कह रहे हैं आई विल डू योर विल। मतलब अर्जुन क्या बता रहे हैं कि न कि आपकी जो इच्छा है वो आप करो मैं स्वीकार करता हूं, नहीं, आपकी जो इच्छा है वो करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो ऐसे है कि भगवान की इच्छा ये भक्त की जिम्मेदारी होती है। प्रभुपाद जी के ये भाव था, चैतन्य महापुर ने कहा कि सारे विश्व भर में जो भगवान के नाम का कीर्तन होगा तो चैतन्यगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरना। तो प्रभुपाद जी ने सोचा अरे भगवान की भविष्यवाणी है भगवान पूरी करेंगे, नहीं प्रभुपाद जी ने सोचा भगवान की भविष्यवाणी है उसको पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। तो आई विल डू योर विल करिष्ये वचनं तव। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि कृष्ण भावना यह बड़ी सरल है, कृष्ण भावना की अलग अलग परिभाषा हो सकती है कि हम रोज जप करते हैं या हम विग्रहों की पूजा करते हैं, हाँ हम भगवान की कथा सुनते हैं, यह सब कृष्ण भावना भावित होना है। पर प्रभुपाद जी को पूछा गया कि कैसे हम कृष्ण भावना भावित कैसे समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी ने एक बार बताया कि जब आप मंदिर में आते हो भगवान के सामने भगवान का दर्शन करते हो, यदि आपको लगता है आपको हृदय में महसूस होता है कि भगवान मुझे पूछ रहे हैं तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, अगर हमें ऐसे महसूस होता है कि मुझे भगवान के लिए कुछ करना है और जब मैं भगवान के सामने जाता हूँ तो मुझे एक अकाउंट देना है भगवान मैंने आपके सेवा में क्या किया है, तो अगर हमें ऐसा भाव आता है तो प्रभुपाद जी बोलते आप कृष्ण भावना भावित हो। तो कृष्ण भावना भावित होने का मतलब यह है कि इट इज नॉट जस्ट लॉन्गिंग फॉर गॉड, इट इज बिलोंगिंग टू गॉड, कि मैं हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहता हूँ, अच्छी बात है भगवान का स्मरण करना है, पर हमें भगवान का स्मरण ही नहीं करना है, हम भगवान की सेवा करनी है। तो करिष्ये वचनं तव, यहाँ पे गीता का पहले जो गीता का भाग है उसका अंत हो जाता है। उसके बाद में अगले जो 5 श्लोक है उसमें संजय अपना भाव बताते हैं। तभी संजय पहले क्या करते हैं, वह बताते हैं किस तरह से ये बड़ा अद्भुत संवाद है और ये अद्भुत संवाद मुझे प्राप्त कैसे हुआ, वह मुझे प्राप्त हुआ मेरे गुरु के प्रसाद से, मतलब व्यासदेव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ ये संवाद, मैं सुन पाया। और फिर वो बताते हैं अगले 2 श्लोकों में कि यह संवाद सुन के क्या हुआ है, ऋष्यामि च मुहुर्मुहु ऋष्यामि च पुनः पुनः, मैं बहुत हर्षित हो गया हूँ। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन विश्वामी च पुनः पुनः। तो वो बोलते अस्त में मैं भी थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करना है ये। तो जो 4th-5th श्लोक बताते हैं वो किस तरह से कि ये बड़ा अद्भुत संवाद था, बड़ा भाग्य था मुझे सुनने को मिला, अरे अर्जुन कृष्ण और महात्मा है उनके कारण संवाद पता चला मुझे। पर उसके बाद में क्या होता है वो बता रहे हैं कि वे वो जब संवाद श्रवण कर संवाद का स्मरण कर रहे हैं उससे बड़ा बहुत बहुत आनंदित हो रहे हैं, और जब संवाद का स्मरण कर रहे हैं पहले संवाद के स्मरण के बारे में 76 श्लोक में बोलते हैं, 77 श्लोक में बोलते हैं वो कि वो संवाद का स्मरण करते हैं तो उस समय वो भगवान के रूप का स्मरण होता है। यहाँ पे भगवान का रूप मतलब क्या है, एक है कि भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, और ये विश्वरूप एक तरह से बहुत ही विस्मयकारक था और दूसरी ओर से बड़ा ही भयकारक था वो रूप। तो वो जो रूप देखते हैं तो अभी यहाँ पे उनको बड़ा आनंद हो रहा है, तो और वास्तव में हम यहाँ पे आनंद जो भाव है ना, हर्ष का भाव, ये थोड़ा आश्चर्यकारक है। क्योंकि क्या है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो साधारण, खास करके किसी को कुछ चीज बताना है जिससे कि उनको समझाना है कि ठीक है आपको ऐसा करो, आप ऐसे मत करो, ये करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ये मत ये करेंगे तो अच्छा नहीं है आपके लिए। और जब हम बात कर रहे हैं किसी से तो उनके चेहरे के हाव भाव से समझ में आता है हमको ये बात मान रहे या नहीं मान रहे। और अगर हमको पता चलता है कि मेरी बात मानने वाले नहीं है तो थोड़ा सा तो हम उदास हो जाते हैं, कह रहे मैं इतना समझाने का प्रयास किया ये सुन नहीं रहे। कभी कभी हम क्रोध भी हो जाते हैं, क्या है भाई इतना समझाया तुमको बुद्धि नहीं है, हम क्या उनको बदना उनको हो कुछ बुरा भला बोल सकते हैं। पर साधारण जब हम कुछ बोलते हैं किसी को समझाने के लिए और हम देखते हैं कि वह व्यक्ति समझा नहीं है, वह व्यक्ति समझ नहीं रहे, व्यक्ति मान नहीं है, तो तभी हम हमारा जो भाव होता है कम से कम थोड़ा उदास हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो वैसे ही अभी यहाँ पे संजय कहाँ हो गए, संजय ने पूरा भगवद्गीता का संदेश बताया है धृतराष्ट्र को और धृतराष्ट्र का कुछ हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। जो संदेश कृष्णा ने अर्जुन को बताया वही संदेश संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। सो यहाँ पे अगर ये ऊपर से मतलब क्या है, मैं वही संदेश किसी को बता रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वही संदेश ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा है और वही चीज वो उनको बता रहे तो वो मान रहे हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये मान नहीं रहे, तो मुझे और उदास हो जाऊंगा मैं। पर यहाँ पे संजय उदास नहीं हो रहे हैं, संजय हर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि संजय का जो केंद्र है वह भगवान की प्रसन्नता है। कि जब हम भगवान का संदेश बताते हैं वह हम भगवान की प्रसन्नता के लिए बताते हैं और लोग सुनते हैं मानते हैं तो उनका कल्याण है उसमें। पर भले ही लोग सुनते हैं मान लोग सुनते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, फिर भी हम जब भगवान का संदेश बता रहे हैं उसमें हमारा कल्याण है। श्री प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बताते थे कि आप प्रचार करने जाते हो कोई नहीं आता है तो आप दीवार को प्रचार करो, और दीवार को प्रचार करोगे उससे आप शुद्ध हो जा सके। ऑफकोर्स अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे प्रचार करना चाहिए कि लोग आकर्षित हो, ऐसे नहीं कि हम ऐसा प्रचार करें लोग चले जाए फिर हो गए मैं दीवार को प्रचार करने में संतुष्ट ऐसे नहीं है। प्रभुपाद जी तैयार थे, भारत में 40 साल उन्होंने प्रचार किया, ज्यादा लोग उत्सुक नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं सोचा कि मैं जिंदगी में यही प्रचार करूंगा, लोग आए ना आए क्या फर्क नहीं पड़ता। नहीं, प्रभुपाद जी ने देखा कि मैं अमेरिका में जाऊंगा वहां पर प्रचार करूंगा, वहां पर अगर लोग आएंगे तो उससे फिर उनको आकर्षित करके मैं भारत में आऊंगा, भारतीय लोगों को भी आकर्षित हो जाएगी क्योंकि वो देख रहे क्या है अमेरिका के लोग भी सुन रहे हैं। तो इस तरह से हमें हमारी ओर से प्रयास करना चाहिए कि इस तरह से संदेश को प्रस्तुत करें कि लोग आकर्षित हो। पर अगर हम जब बोलते हैं कि भगवान का संदेश लोग आकर्षित नहीं होते तो उससे हमें उद्विग्न होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है और भगवान हमसे प्रसन्न होकर हम पे कृपा करने वाले हैं। और यहाँ पे संजय क्या देख रहे हैं कि भगवान की कथा बोलने से कम जब तक हम भगवान की कथा बोलते हैं तो हम उनका स्मरण करते हैं और जितना हम भगवान का स्मरण करते हैं उतना हम संतुष्ट हो जाते हैं, उतना हम प्रसन्न हो जाते हैं। पर क्या होता है कई बार हम भगवान की कथा बोलते हैं तो हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि लोग मेरे बुद्धि का स्मरण कितना कर रहे हैं, देखो मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, और फिर अगर हम देखते हैं कि लोग को इसके ध्यान ही नहीं दे रहे तो फिर क्या होता है हम मायूस हो जाते हैं। तो क्या है कि जो भगवद्गीता ने बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करो फल से आसक्त मत हो जाओ, तो वही भाव संजय यहाँ पे दर्शाते हैं। उनका कर्म है यहाँ पे कि वो भगवान का संदेश बताना, संदेश बताते हैं वो और फिर उसके बावजूद धृतराष्ट्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फिर भी संजय जो है प्रसन्न है क्योंकि भगवान का संदेश बताने का प्रधान उद्देश्य क्या है कि हमें खुद भगवान का स्मरण करना है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के अपने अंतिम तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम कुछ लिखते हैं जब हम कुछ कथा करते हैं तो उसका प्रधान उद्देश्य है कि हम हमारे हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, द्वितीय उद्देश्य है कि उससे दूसरों का कल्याण भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे
संजय यहाँ पे अंत कर सकते थे, पर एक और श्लोक बोलते हैं, क्योंकि क्या है जो जो पहले श्लोक में सवाल पूछा था उन्होंने कि धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु उत्सव मामका पांडवा शैव किम कूर्वत संजय, कि जो दोनों सेना जब एक साथ में आ गई थी आमने सामने युद्ध करने के लिए, तभी क्या हुआ, किम अकूर्वत संजय, तो वास्तव में मैंने पूछा उन्होंने क्या किया। तो ये जो सवाल था ये थोड़ा विचित्र सवाल है। मान लीजिए अब अगर आप यहाँ से अब आप घर जाते हो, क्या आपका कोई मित्र है भक्त है वो यहाँ पे नहीं आए कार्यक्रम के लिए, तो शायद आप वो पूछ सकते हैं कार्यक्रम में क्या हुआ, तब बता रहे ये सब हुआ। पर मान लीजिए वो पूछते हैं ठीक है कार्यक्रम हो गया, उसके साथ में उसके बाद में आप सब प्रसाद खाने को बैठ गए, और जब प्रसाद को खाने को बैठ गए तभी क्या हुआ, अरे प्रसाद खाने का बैठ गए तभी प्रसाद खाया और क्या करने वाले तभी। तो जो सवाल पूछ रहे हैं युधिष्ठिर, सवाल क्या पूछ रहे, दोनों सेना युद्ध करने के लिए आ गए तभी क्या हुआ, युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध हुआ, उस सवाल पूछने की बड़ी बात क्या है। तो वो सवाल की बड़ी बात यह है कि तभी धृतराष्ट्र को संशय था। धृतराष्ट्र क्या है, ही इज साइमल्टेनियसली टॉर इन होपिंग फॉर द इम्पॉसिबल एंड फियरिंग द इनेविटेबल। होपिंग फॉर द इम्पॉसिबल, जो असंभव है उसकी आशा कर रहे हैं। जो असंभव क्या है कि जो अधार्मिक कौरव है वो धार्मिक पांडवों को हराएंगे, कृष्ण के विपरीत जाकर भी यश प्राप्त करेंगे, वह आशा कर रहे हैं उसके। होपिंग फॉर द इम्पॉसिबल एंड ड्रेडिंग द इनेविटेबल, जो जो अनिवार्य जो होने ही वाला है। जो धृतराष्ट्र दुर्योधन अधर्म का इतना सारे विध्वंस किया अधर्म के कारण, उसका विनाश अनिवार्य है, तो इन दोनों में वो फंसे हुए है। तो इसलिए जब पूछते किम अकूर्वत संजय, ये संजय उन्होंने क्या किया तभी वहां पे, तो क्या उनका सवाल है क्या किया, पर वास्तव में उनकी चिंता क्या है, वहां पे हुआ क्या, वहां मेरे पुत्र जीते या पांडव जीते। तो इसीलिए अभी क्या हुआ किम अकूर्वत, उस सबका वर्णन आगे भगवद गीता जो है ये महाभारत का एक भाग है, भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से 30वें अध्याय तक है ये, पर या कुछ सेंशन में 18वें अध्याय से 35वें अध्याय तक है। पर महत्वपूर्ण जो है कि इसके बाद में जो वर्णन आता है पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हुआ वर्णन बताया गया, पर यहाँ पे एक श्लोक में वो भविष्यवाणी देते हैं कि तुम पूछ रहे हो क्या हो रहा है क्या होने वाला है, उसका मैं जवाब देता हूँ, और वो आखिरी श्लोक है गीता का, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। तो बताते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहाँ पे योगेश्वर है कृष्ण है। तो अभी इसके पिछले श्लोक में बताया गया था तच्च संस्कृत्य रूपमत्य अद्भुतम हरे, जो हरि जिन्होंने अद्भुत रूप दिखाया है। और उसके बाद तो जब 11वें अध्याय में जब भगवान ने अपना अद्भुत दिव्य रूप दिखाया तभी एक शब्द इस्तेमाल किया था, वहां पे एक ही बार भगवद गीता में भगवान को इस नाम से संबोधित किया है, महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरं। तो जो वहां पे है भगवान को महायोगेश्वर बताया है, और यहाँ पे भी जब संजय संवादन कर रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, अभी योगेश्वर क्यों बताया है इसको, क्योंकि ये बताने का भाव है कि वही जो योगेश्वर है उन्होंने अपना पूरा विश्व रूप दिखाया है। इसी भगवद गीता में ही 7 अध्याय पहले विश्व रूप दिखाया है, और ये भगवद गीता होने के पहले कुछ हफ्ते पहले जब भगवान शांति दूत के रूप में आए थे तभी भी उन्होंने विश्व रूप दिखाया था, और वह विश्व रूप धृतराष्ट्र ने खुद अपने आंखों से देखा है। तभी धृतराष्ट्र ने भगवान से आंखें मांगी थी, कृपया आप मुझे दिखाओ क्या दिख रहा है, तो भगवान ने उनको आंखें दी थी। तो संजय याद दिला रहे उनको कि तभी कृष्ण अकेले थे, तभी कृष्ण निहत्थे थे, तभी दुर्योधन अपने सारे सेना अपने विशाल मात्रा में सैनिकों और योद्धाओं को लाकर वह कृष्ण को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, और तभी वह पूर्णतया निष्फल हो गए थे। तभी कृष्ण ने एक शस्त्र भी नहीं उठाया और कृष्ण ने केवल अपनी योग शक्ति से, योगेश्वर जो है उन्होंने अपना विश्वरूप दिखाया और क्या कर दिया, तुम्हें तुम्हारी योजना, तुम्हारे पुत्र की योजनाओं को पूरा नष्ट व्यस्त कर दिया। तो अभी वही योगेश्वर, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, वो यहाँ पे, वो यहाँ पे अकेले नहीं है, उनके साथ कौन है, यत्र पार्थो धनुर्धर, और उनके साथ उनके भक्त जो है धनुर्धर अर्जुन है। तो अभी अर्जुन क्या है यहाँ पे, पार्थ वो बताया गया, पर उनको यहाँ पे धनुर्धर बताया गया। धनुर्धर मतलब क्या, उन्होंने अपना धनुष उठा लिया है। जो भगवद गीता के शुरुआत में अर्जुन ने क्या किया था, अपना विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानस, उन्होंने अपना शोक में आकर अपना धनुष नीचे रख दिया था, पर यहाँ पे उन्होंने अपना धनुष उठा लिया है। धनुष उठा लिया है मतलब क्या, अभी अर्जुन का धनुष जो है, अर्जुन का गांडीव है, वह हमारे दृढ़ संपल संकल्प का एक प्रतीक है। इस भौतिक जगत में कई बार समस्याएं आती है, कई बार अलग अलग प्रकार के द्वंद्व आ जाते हैं, तभी हम हताश हो जाते हैं, मां दृढ़ संकल्प चला जाता है। पर गीता का संदेश सुनकर जैसे अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया, वैसे हम भी, हमारा दृढ़ संकल्प पुनः जागृत हो जाता है। फिर बता रहे हैं कि जब इस तरह से भगवान और भक्त साथ में आ गए तो क्या हो गया, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिरम तिरम, बोलते यहाँ पे श्री आ जाएगी, यहाँ पे ऐश्वर्य आ जाएगा, यहाँ पे शक्ति आ जाएगी, यहाँ पे हर प्रकार का यश आ जाएगा। तो ये जो दूसरा अंत है भगवद गीता का, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक तरह से भौतिक समृद्धि बताई जा रही है। तो संजय धृतराष्ट्र बता रहे हैं कि तुम्हें भौतिक समृद्धि प्राप्त नहीं होने वाली है, जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन है वहीं पे यश है, वहाँ पे ही समृद्धि है, तो इस युद्ध में उनका ही विजय होने वाला है। तो भगवद गीता का पहला अंत है, वहाँ पे एक अंतरंग रूप से विजय है कि जो आत्मा भगवान की शरण चला जाता है। करिष्ये वचनं तव, भगवद का दूसरा अंत क्या है, बाह्य रूप से विजय है। तो जब हम भगवान की शरण होकर हम हमारे पूरे हौसला बल बुलंद रख के हम कार्य करते हैं, तो भगवान की कृपा से जो असंभव है वह भी संभव हो जाता है। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण श्री प्रभुपाद, वह 70 साल की उम्र में क्या हमेशा भगवान के शरणागत रहे। करिष्ये वचनं तव, उनके गुरु महाराज ने बताया कि आप विश्वभर, आप विश्व पाश्चात्य देशों में प्रचार करो। प्रभुपाद जी अपने युवावस्था में प्रचार नहीं कर पाए, अपने बीच के जीवन में प्रचार नहीं कर पाए, पर 70 साल की उम्र में उन्होंने प्रचार करने की इच्छा व्यक्त की और वास्तव में उस पर कार्यरत हो गए। और फिर क्या हुआ, भगवान की कृपा से सारे विश्व भर में उन्होंने प्रचार कर लिया और सारे विश्व भर में सैकड़ों सैकड़ों की मात्रा में मंदिर बन गए, लाखों की मात्रा में भक्त बन गए और सारे विश्व भर में भगवत कीर्तन जो है वह प्रचलित हो गया। तो यह जो प्रभुपाद जी की कृपा है, यह प्रभुपाद जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ विश्व भर में बनाया है, वही ये तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मति, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। तो भगवद्गीता का ये जो दो अंत है कि एक अंतरंग विजय और दूसरा है बाह्य विजय। तो बाह्य रूप से विजय जो है वह कभी कभी होने में समय लगता है। पांडव जो तो महान भक्त है और उनके साथ भगवान कृष्ण स्वयं थे, फिर भी उनको कुछ समय के लिए वनवास जाना पड़ा, फिर भी उनको अनेक प्रकार के समस्याएं झेलनी पड़ी, पर उसके बाद में जो है अंत में उनका विजय हुआ। पर इस सब के जब बाह्य रूप से विजय हो, बाह्य रूप से पराजय हो, पर वो अंतरंग रूप से भगवान की शरण में थे और वही उनका असली विजय था, वही उनका शाश्वत विजय है। तो यह जब हम भगवान भगवद गीता के दो अंत समझते हैं कि वही जो भगवान जिन्होंने अर्जुन को मार्गदर्शन किया वही हमारे हृदय में है हमारे मार्गदर्शन करने के लिए, तो जो भी समस्या आएगी हमारे जीवन में भगवान का स्मरण करके, भगवान को ये भाव दिखा के, भगवान इस समस्या इस परिस्थिति में मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं पर क्या करूं मुझे पता नहीं है, आप मुझे बताओ मैं कैसे आपकी सेवा करूं, ये भाव जो हम रखते हैं तो ऐसे नहीं है कि अचानक कोई रोशनी जागृत हो जाएगी, बिजली आ जाएगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं है। कि फेथ मीन्स टू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड इवन व्हेन द फुल पाथ इज नॉट क्लियर, ऐसे नहीं है कि हमें सारा दुनिया भर का रास्ता, जीवन भर का रास्ता पूरा साफ होना चाहिए फिर मैं आगे जाऊंगा, नहीं,
एक कदम आगे लो, एक कदम आगे लो, एक कदम आगे लो, एक कदम आगे लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक छोटी सी, छोटे से एक फ्लैश लाइट है, छोटा सा टॉर्च है, तो उसे दूर ले तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, पर हमारे एक कदम हमको आगे दिखता है, तो एक कदम आगे लो, एक कदम आगे लो। अगर हम टॉर्च साथ में लेके जा रहे तो अगले कदम जब हम आगे लेंगे वहाँ पर भी टॉर्च दिखाएगा, एक कदम आगे लेंगे वहाँ पर भी टॉर्च दिखाएगा। तो वैसे क्या है कि हाँ, बड़े बड़े फैसले जब करने होते हैं तो अरे ये ऐसे करूँ, वैसे करूँ, वैसे करूँ, बड़ी चिंता हो जाती है, पर एक कदम आगे लो, एक कदम आगे लो, एक कदम आगे लो। छोटी चीज हम करते रहते हैं, द स्टेप्स आर रेवोल्यूशनरी, द रिजल्ट इज रेवोल्यूशनरी। जब एक एक कदम आगे लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा लगता है इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, पर हम ऐसे एक एक कदम आगे लेते हैं तो उसका जो अंत में फल होता है वह रेवोल्यूशनरी होता है, वह एक क्रांति कर सकता है हमारे जीवन में। यह भगवान की कृपा है, और यह जो भगवान की भगवदगीता का संदेश है यह अनंत है। जब हम समझते हैं, भगवदगीता का अंतरंग कर लेते हैं, तो यह अनंत संदेश हमेशा हमारे हृदय में जागृत रहकर हमें मार्गदर्शन करके हमें आगे अग्रसर करते रहता है। तो सारांश में हमने आज चर्चा की किस तरह से भगवदगीता तीन स्तर पर ये एक संवाद है। पहला है कृष्ण और अर्जुन का संवाद, और दूसरा है संजय और धृतराष्ट्र का संवाद, तीसरा है आत्मा और परमात्मा का संवाद, जो कि हम ये शरीर रूपे रथ में बैठे हुए इस संवाद हो रहा है। तो फिर हमने भगवदगीता का जो भाव है, साधन क्या है, साध्य क्या है, ये समझना। साधन साध्य है, कहाँ जाना है, भगवान कृष्ण के पास जाना है, उसके साधन क्या है, उसके लिए उनकी भक्ति है। तो फिर हमने भगवदगीता का पहला अंतर विस्तार रूप से देखा 63वें श्लोक से 77वें श्लोक में, उसमें कैसे भगवान पहले अर्जुन को बोलते हैं अभी आप विचार करो और फैसला करो, पर भगवान जब अर्जुन विचार पड़ जाते हैं, फैसला नहीं कर पाए, तो भगवान बोलते हैं मैं स्पष्ट करता हूँ, उनको सबसे गुह्य ज्ञान बताता हूँ, और वो बोलते हैं तुम मेरी भक्ति करो, मैं जिम्मेदारी देता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें भगवद्धाम ले जाऊँगा, और अगर कुछ भी पाप वगैरह हो रहे हैं मैं उनसे तुम्हें छुटकारा प्राप्त करा दूंगा, और ये जो गुह्य ज्ञान है सबको देना चाहता हूँ, पर उनको परिपक्व होना चाहिए, फिर मैं ये ज्ञान दूंगा। और फिर भगवान बोलते हैं कि इसकी फलश्रुति क्या है, ये ज्ञान जो प्रचार करेगा उसको पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी, प्रचार नहीं कर पाते कम से कम आप उसका अध्ययन करो, अध्ययन नहीं कर सकते तो कम से कम श्रवण करो। तो रस्सी पकड़ करके बाहर आ जाओ, रस्सी पकड़ के बाहर जाते रस्सी बांध दो फिर बाहर आ जाओ, रस्सी बांध नहीं करते तो बकेट के अंदर बैठ जाओ मैं तुमको खींच देता हूँ, वैसा है भगवान की कृपा और बढ़ती जा रही है। फिर बाद में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम समझे हो या नहीं समझे हो तो मैं दोहराने के लिए तैयार हूँ। और कृष्ण का अर्जुन क्या कहते हैं तभी, हाँ मेरा मोह चला गया है, मेरी स्मृति पुनः जागृत हो गई है, आपकी कृपा है ये भगवान, अभी जो अब मैं पूरा पुनः स्थित हो गया हूँ, स्थित हो गया इसलिए कि योद्धा बनने के लिए, मैं आपके सेवक के भाव में स्थित हो गया हूँ, करिष्ये वचनं तव। तो भगवान की इच्छा को स्वीकार करना यह उच्च स्तर की शरणागति है, पर सर्वोच्च स्तर की शरणागति है कि भगवान की इच्छा को पूरी करने की जिम्मेदारी स्वयं लेना। तो यह जो शरणागत भाव है कि वह अर्जुन दर्शाते हैं। और फिर दूसरा भगवदगीता का जो अंत है कि संजय गीता के महात्म्य को समझ कर, कितना अद्भुत संवाद है, कितना भाग्य है मुझे श्रवण करने का, इसको व्यक्त करते हैं। और फिर वो यद्यपि बाह्य रूप से अयशस्वी हो गए वो धृतराष्ट्र के हृदय को परिवर्तित करने में, पर क्योंकि उनकी चेतना धृतराष्ट्र पर केंद्रित नहीं है, उनकी चेतना भगवान पर केंद्रित है, इसलिए सिर्फ भगवान का स्मरण करके हर्षित हो गए। और फिर बताते हैं संजय को कि संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम विचार कर रहे हो तुम्हारा यश होना संभव है क्या, बोले कि नहीं, वो ऐसे बताते नहीं उनको सीधा कि तुम अपयशस्वी होने वाले हो, बताते जहाँ पे कृष्ण है जहाँ पे अर्जुन है वहीं पे यश होगा। तो ये भगवदगीता का अंत जो कृष्ण अर्जुन के संवाद में बताया गया था कैसे अंतरंग यश है जब हम भगवान के शरण चले जाते हैं, और फिर बाह्य यश क्या है, इस जगत में भी हमको यश मिलता है। तो जगत में यश कभी जल्दी मिलेगा कभी देर से मिलेगा, इसे हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, पर जो अंतरंग यश अगर हमें रहेगा कि अगर भगवान के शरण रात रहेंगे, तो जैसे संजय हमेशा कृष्णामी च मुहुर्मुहु हमेशा हर्षित था, वैसे हम भी हर्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद्गीता की श्री प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की गीताय गौर प्रेमानंदे
हरे कृष्णा। हम धन्यवाद करना चाहेंगे गुरु जी को, मुंबई से आके और असल यहाँ पे और